9 जून गुरुवार का नमस्कार भारत, फैसल अहमद अली से। नरेंद्र मोदी अमरीकी संसद की साझा बैठक में हुआ जोरदार स्वागत।
मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, आई हैव द हाई प्रिविलेज एंड द डिस्टिंक्ट ऑनर इन प्रेजेंटिंग टू यू हिज एक्सलेंसी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
कांग्रेस में भाषण देने वाले छठे भारतीय प्रधानमंत्री, लेकिन पाकिस्तान भारत अमेरिका के गहरे रिश्ते को किस नजरिए से देखता है, सुनेंगे एक बातचीत। और पाकिस्तान में ऑनर किलिंग में मां ने बेटी को जलाकर मार डाला।
उसने लव मैरिज की थी, मोस्ट प्रोबेबली कोई ऑनर किलिंग की तरफ बात जा रही है। और दो चीजें हैं कि उसको स्ट्रैंगुलेट भी किया गया है, गले में उसके दुपट्टा भी डाला गया है।
होगी अखबारों की समीक्षा, खबरें खेल की भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
समाचार मानसी दास से। अपने 3 दिन की अमरीका यात्रा के दौरान कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। लगभग 45 मिनट लंबे अपने भाषण में उन्होंने भारत और अमरीका के बीच रिश्ते के एक नए युग की शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी संसद में उन्हें आमंत्रित करके 125 करोड़ लोगों वाले देश के लोकतंत्र को सम्मान दिया गया है। इसराइली पुलिस का कहना है कि 2 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने तेल अवीव शहर में गोलीबारी की है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा शहर के केंद्र में इसराइली रक्षा मंत्रालय के सामने की सड़क की दूसरी तरफ सरोना मार्केट कॉम्प्लेक्स में हुई। पुलिस ने दोनों संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। तेल अवीव के पुलिस प्रमुख ने इसे एक गंभीर चरमपंथी हमला बताया है, लेकिन किसी तीसरे हमलावर के होने की संभावना से इंकार किया है। इथन उवेद हादसा होने वाली जगह के करीब थे। उन्होंने बताया,
ये लिसन शूटिंग ऑफ,
मैंने एक मशीन गन के चलने की आवाज सुनी। नहीं, वो बंदूक नहीं थी। मैंने जो आवाज सुनी थी उसी तरफ से अंदर भागा। मैंने देखा मार्केट में रेस्तरां में 2 लोग जख्मी हालत में गिरे हुए हैं। मैं उनकी मदद के लिए पहुंचा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि पुलिस और सुरक्षा कर्मी नहीं आए थे, वो नहीं पहुंचे थे। ये थे इसराइल में इथन ओवेद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के एलेपो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए हवाई हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया पर नजर रखने वाले मॉनिटरिंग समूह का कहना है कि हमला पूर्वी शार के बयान अस्पताल में हुआ। अभी तक किसी गुट ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सरकारी बल शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले मंगलवार को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने एक भाषण में कहा था कि वे विरोधियों से देश का एक एक इंच वापस लेंगे। रूस ने एक नया यात्री विमान पेश किया है, जिसके बारे में उसे उम्मीद है कि वह पश्चिमी देशों के उसके प्रतिद्वंदियों के बनाए विमानों को टक्कर देगा और दुनिया भर में बिकेगा। इरकुट कॉरपोरेशन ने साइबेरिया में अपने कारखाने में MS-21 विमान का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जुड़वा इंजन के साथ छोटी और मध्यम दूरी का यह विमान रूसी नागरिक उड्डयन का गर्व बनेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस विमान की डिलीवरी 2018 से शुरू होगी। वैज्ञानिकों ने 7 लाख साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है, जिन्हें वे हॉबिट नाम से जाने जाने वाले छोटे कद के प्राचीन मानव के पूर्वज कहते हैं। नेचर नाम की पत्रिका में छपा है कि कम से कम एक बड़े व्यक्ति और 2 बच्चों के ये जीवाश्म होमोसियांसिस के जैसे छोटे हैं और करीब 1 मीटर ऊंचे कद के हैं। होमोसियांसिस आज से लगभग 50,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। बीबीसी समाचार।
पिछले कई दिनों की तरह आज भी सुबह के बीबीसी हिंदी रेडियो कार्यक्रम नमस्कार भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली एक बार फिर से आपके साथ हूं। बीबीसी हिंदी रेडियो के श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे से, जिसके तीसरे और आखिरी दिन उन्होंने अमरीकी संसद यानी कांग्रेस की साझा बैठक में अपनी स्पीच दी तालियों की गड़गड़ाहटों के बीच। तालियों का सिलसिला तभी शुरू हो गया जब उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया।
We trade more with the US than with any other nation.
नरेंद्र मोदी के लिए ये शायद फख्र की घड़ी रही हो। यही वो कांग्रेस थी जिसने नरेंद्र मोदी को लंबे वक्त तक अमेरिका का वीजा न मिल पाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और साल 2014 में पद संभालने के बाद से अमेरिका का ये उनका चौथा दौरा है। नरेंद्र मोदी ने बात शुरू की अमेरिका और भारत के मजबूत होते रिश्तों की।
वी ट्रेड मोर विद द यूएस देन विद एनी अदर नेशन।
हम जितना व्यापार अमेरिका के साथ करते हैं उतना किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं। व्यापार से दोनों मुल्कों में रोजगार की सुविधा पैदा होती है। जिस तरह का मामला व्यापार में है वैसा ही रक्षा क्षेत्र में भी है। हम अमेरिका के साथ किसी भी देश की तुलना में अधिक रक्षा अभ्यास करते हैं। रक्षा सौदे 10 सालों में कम से कभी शून्य हुआ करते थे, जो अब 10 अरब डॉलर हो गए हैं। ये थे भारतीय प्रधानमंत्री के शब्द। मोदी ने इसके बाद आतंकवाद का मुद्दा उठाया, जो उनके शब्दों में भारत के पश्चिम से लेकर अफ्रीका तक अलग अलग नामों से मौजूद है।
इट मे गो बाय डिफरेंट नेम्स फ्रॉम लश्कर-ए-तैयबा टू तालिबान टू आईसिस।
हो सकता है इसका नाम अलग अलग हो, लश्कर-ए-तैयबा से लेकर तालिबान, आईसिस, लेकिन इन सब की सोच एक ही है, नफरत, कत्ल और हिंसा। ये एक छाया की तरह है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी काली परछाई फैला रखी है, लेकिन इसका भरण पोषण भारत के पड़ोस में होता है। ये थे नरेंद्र मोदी के अल्फाज। हालांकि मोदी ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन लश्कर और भारत का पड़ोस कहने पर साफ हो गया कि उनका इशारा किसकी तरफ था, यानी पाकिस्तान की तरफ। मोदी ने अमरीकी सांसदों से माफ कीजिएगा ऐतिहासिक झिझकों को भूल कर आगे बढ़ने की बात भी की। मैंने थोड़ी देर पहले बात की वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से और पूछा कि भारतीय प्रधानमंत्री की अमरीकी यात्रा को कितना कामयाब माना जा रहा है।
देखिए, भारतीय पक्ष और अमरीकी अधिकारियों दोनों से जो मेरी बात हुई है वो काफ़ी कामयाब दौरा मान रहे हैं इसको। प्रधानमंत्री का जो भाषण था कांग्रेस में उसकी काफ़ी तारीफें हुई। काफ़ी बड़े निवेश का ऐलान हुआ कल, खासतौर से जो अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस, उन्होंने 3 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया। पहले से ही अमेजन ने 2 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है भारत में। दूसरी तरफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से 48 अरब डॉलर अगले 2-3 सालों के दौरान निवेश का एक आश्वासन दिया गया है। सरकारी फ्रंट पर अगर देखें तो अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया है, यानी कि वो दर्जा जो अमेरिका आमतौर पर बहुत ही करीबी मित्र राष्ट्रों को देता है, जिसके तहत रक्षा व्यापार और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मुमकिन होता है। एक अमेरिकी कंपनी को आखिरकार एक जिसको कहते हैं कमर्शियल डील 6 परमाणु बिजली घर बनाने के लिए मिला है भारत में। राष्ट्रपति ओबामा के नज़रिए से देखें तो उनको एक आश्वासन मिला है प्रधानमंत्री मोदी से कि भारत में जाकर के वो जो घरेलू कानूनी प्रक्रिया होती है पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए और उसको रेटिफाई करने के लिए उसको वो शुरू करेंगे। और साथ ही राष्ट्रपति ओबामा ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता को भरपूर समर्थन दिया है।
ब्रिटिश, जाहिर है जब अमेरिका की बात थी और भारत की भी, दोनों जो है जिसको कि आतंकवाद और चरमपंथ से जो है वो जूझते रहे हैं, उस पर भी नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा, उन्होंने नेबरहुड का नाम लिया और ख़ासतौर पर उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र किया।
जी हाँ, उन्होंने जब आतंकवाद की बात की तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद पश्चिम से लेकर के अफ्रीका तक है और अलग अलग नामों से है, लेकिन जैसा कि आपने कहा काफ़ी हद तक उनका निशाना पाकिस्तान पर था, उन्होंने नाम नहीं लिया। और कांग्रेस को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने एक बहुत ही साफ मैसेज भेजा है उन लोगों को कि जो चरमपंथ का इस्तेमाल राजनीतिक फ़ायदों के लिए करते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब ज़रूरत है एक ऐसी नई नीति की जिसके तहत जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं, जो उसको प्रायोजित करते हैं, जो उन्हें पनाह देते हैं, उनको अलग थलग किया जाए। जो ऐसी नीति जो गुड और बैड टेररिस्ट्स के बीच में किसी तरह का फ़र्क ना करे और आतंकवाद को किसी एक खास धर्म से अलग करके देखने की ज़रूरत है।
ब्रिटिश, एक जो बात और जिस पर बार बार काफ़ी जगह इम्फेसिस डाला जा रहा है, काफ़ी इसको बढ़ा चढ़ा कर और काफ़ी जगहों पे इसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री का रेफरेंस दिया, यानी कि पुरानी ऐतिहासिक झिझकों को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने किस तरफ इशारा था उनका?
देखिए, काफी हद तक शीत युद्ध के दौरान जो पिछले 50-60 सालों में भारत और अमेरिका के बीच में जो एक रिश्ता रहा है, जिसमें एक भरोसे की कमी रही है, उसकी तरफ इशारा था उनका। और वो इन दिनों जो खासतौर पर बात हो रही है कि एक दूसरे के फौजी ठिकानों के इस्तेमाल पर जो एक समझौता होना है, जिसका मसौदा तैयार हो गया है, या फिर भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया जाना, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि भारत क्या अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को छोड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री पहले भी और हाल ही में उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बोला था, कहा था कि हम अपनी उस नीति को कभी नहीं छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन जो भारत के हित में जो चीजें हैं उसके लिए हम आगे बढ़ाएंगे।
ये थे ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी वाशिंगटन संवाददाता। अमेरिका और भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों पर पाकिस्तान में काफी बहस हो रही है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान के सीनेट में इसे लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई। इस मामले पर बीबीसी की अंबर खैरी ने बात की तारिक फातमी से। तारिक फातमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के विशेष सहायक हैं। अंबर खैरी ने उनसे पूछा कि एक तरफ तो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अलग थलग होता नजर आ रहा है, क्या ये पाकिस्तान की विदेश नीति की नाकामी का नतीजा है?
जी नहीं, मैं इस तरह से तो बिल्कुल नहीं डिस्क्राइब करूंगा। मुल्कों के बीच में एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग्स भी होती है, डिफरेंसेस भी होते हैं, और डिप्लोमेसी का काम यह है कि इन डिफरेंसेस को ब्रिज किया जाए और एक कॉमन पोजीशंस पर अराइव किया जाए। हमारी तो राय यह है कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई है।
तो पाकिस्तान भी अमेरिका से ये भी कहता रहा है कि उसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल किया जाए, तो उसके क्या नतायज निकले हैं?
पाकिस्तान ने अमेरिका से बिल्कुल नहीं कहा है, हमने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है, खास के जो एनएसजी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मेंबर स्टेट्स है, उनसे कहा है।
अच्छा, जो एनएसजी में भारत की शमूलियत का सवाल है, तो भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है?
नुकसान के पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा आयरोनिक और क्या बात हो सकती है कि एनएसजी की क्रिएशन जो है वो इन रिएक्शन टू इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट था। यानी ये मुल्कों ने एनएसजी क्रिएट किया था क्योंकि इंडिया ने एक ऐसी हरकत की थी मई 1974 में, जिसमें नॉन प्रोलिफरेशन की फैब्रिक को की धज्जी उड़ाई थी। मगर पाकिस्तान ये वाजे करना चाहता है दुनिया को कि कोई भी ग्लोबल अरेंजमेंट्स जो हो उसको एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर उसे परस्यू करना चाहिए और उसमें कंट्री स्पेसिफिक कंसेशंस नहीं होना चाहिए।
अच्छा, वैसे पाकिस्तान में काफी हद तक ये तासुर है कि भारत की जो जारहाना खर्चा पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, मगर कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी ही पॉलिसियों की वजह से तनहा होता जा रहा है, तो क्या ये बात सही है?
देखिए, ये तासुर जो है इसकी कोई बेसिस होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में जिस किस्म की इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे हमारे ताल्लुकात अब चीन के साथ एक अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पर पहुंचे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की इनिशिएटिव से रूस के साथ बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन हो रही है, न सिर्फ ट्रेड कॉमर्स में बल्कि एनर्जी में और डिफेंस सेक्टर में भी इस किस्म की पहले कोऑपरेशन नहीं देखी गई थी। तो इस पॉलिसी को अगर आप आइसोलेशन या तनहाई डिस्क्राइब करते हैं तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि ये बड़ी अप्रोप्रिएट आप उसकी नॉमिनेचर कर रही हैं या डिस्क्रिप्शन दे रही।
ये थे तारिक फातमी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के विशेष सहायक।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब फिर एक बार रुख पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान की पुलिस ने एक महिला को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जिस लड़की का कत्ल किया गया उसके जिस्म पर मिले निशानों से पता चलता है कि उसे पहले टॉर्चर किया गया था। सबा एतजाज की रिपोर्ट।
پولیس کے مطابق لڑکی کی والدہ نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے زینت پر پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی۔ ایس پی عبادت نثار نے بتایا کہ وہ مقتول لڑکی کے دبئی سے آنے والے بڑے بھائی انیس کو بھی تلاش کر رہے ہیں جو واقعے کے بعد سے فرار ہو چکا ہے۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ لڑکی کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کا گلا بھی دبایا گیا ہے اور آگ بھی لگائی گئی ہے۔ تاہم پوسٹ مارٹم کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ زینت کی موت کیسے ہوئی۔ ایس پی عبادت نثار نے کہا،
جی فی الحال تو یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس نے لو میرج کی تھی، کہ موسٹ پروبیبلی کوئی آنر کلنگ کی طرف بات جا رہی ہے، اور دو چیزیں ہیں کہ اس کو اسٹرینگولیٹ بھی کیا گیا ہے، گلے میں اس کے دوپٹہ بھی ڈالا گیا ہے، پھر کوئی چیز جو ہے پیٹرول ہے یا مٹی کا تیل ہے ایسی چیز ڈال کے اس کو آگ لگائی گئی ہے، یہ دونوں چیزیں۔
زینت کے شوہر خان نے بتایا کہ وہ زینت کو اسکول کے زمانے سے جانتے تھے۔ جب زینت نے اپنے گھر والوں سے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسے مارا پیٹا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حسن خان نے کہا،
وہ ڈیلی مارتے تھے، جب بھی وہ بولتی تھی یا بات کرتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ مارتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شادی ماری ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، وہ لڑکی کا انکل آیا تو اس کی امی، انہوں نے بولا کہ لڑکی آپ بھیج دو ہمارے گھر، 8 دن بعد ہم خود ہی بھیج دیں گے واپس، ٹھیک ہے، ہماری گلی میں عزت ہے۔ تو ہم نے انہوں کے بھروسہ کر کے بھیج دیا، لیکن لڑکی مجھے اینڈ تک کہتی رہی انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، مجھے پتا میرے گھر والوں کا۔
پولیس نے لڑکی کی لاش کو سرد خانے منتقل کر دیا ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے منتظر ہیں، جبکہ لڑکی کی والدہ اس وقت حراست میں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ صوبہ پنجاب کے بلائی علاقے مری میں 5 ملزمان نے رشتے سے انکار کرنے پر ماریا بی بی نامی اسکول ٹیچر کو مبینہ تشدد کے بعد آگ لگا کر کھائی میں پھینک دیا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گئیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق گزشتہ سال میں عورتوں کے غیرت کے نام پر تقریباً 1000 قتل کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ صبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
نمسکار بھارت، شارٹ ویو 31, 25 اور 19 میٹر بینڈ، یعنی 9835, 9915, 11995 اور 15510 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
اب سنوائیں گے آپ کو اخباروں کی سمیکشا، لیکن آج دلی اسٹوڈیو سے نہیں، ممبئی سے۔ اس وقت سشانت موہن بی بی سی ہندی کے سنواداتا ممبئی میں، وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ سشانت، سواگت ہے آپ کا کاریکرم میں۔
بہت بہت شکریہ فیصل، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ممبئی میں آج کی اخبار پڑھیں گے تو آپ کا جو مزاج ہے وہ ایک دم خوشنما ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ آج تو بس بارش ہو ہی گئی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گرمی بہت ہے یہاں پر، اور ہر پیپر میں مانسون کے آنے کی خبر ہے۔ تو بتاتا چلتا ہوں کہ ہندوستان ٹائمز کا جو انگریزی اخبار ہے وہ مانسون کے آ جانے کو توجہ دے رہا ہے، ساتھ ہی پردھان منتری نریندر مودی کے امریکی سنسد کو دیے گئے سمبودھن کو بھی سب سے پہلی جگہ ملی ہے، اور اسے ایتیہاسک سمبودھن مانا ہے ہندوستان ٹائمز کے انگریزی سنسکرن نے۔ اس کے علاوہ خاصا چرچا میں آ چکی فلم اڑتا پنجاب پر آج ہائی کورٹ سنوائی کرے گا، اور اس کی ریلیز کو اے سرٹیفکیٹ یعنی کہ اڈلٹ سرٹیفکیٹ ملے گا یا نہیں اس بات پر فیصلہ ہوگا، یہ بھی ہندوستان ٹائمز کہتا ہے۔
تو مطلب اڑتا پنجاب کا جو معاملہ ہے وہ ممبئی میں بھی خوب اڑا ہوا ہے۔
جی بالکل، اور اڑتا پنجاب کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ سامنا جو مراٹھی کا مکھیہ اخبار ہے، پرمکھ اخبار ہے، شیو سینا کا مکھ پتر ہے، اس اخبار کو چھوڑ کر باقی سارے اخباروں نے اس بات پر، اس مدعے پر بات کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی کے بھاشن کو بڑی توجہ ملی ہے امریکہ میں، اور اسے ایک ایتیہاسک بھاشن مانا ہے انہوں نے۔ ساتھ ہی اڑتا پنجاب کے معاملے میں سینسر چیف نے جس طرح سے انوراگ کشیپ پر عام آدمی پارٹی کا ایک سدسیہ ہونے کا آروپ لگایا ہے، اسے بھی ٹائمز آف انڈیا نے بتایا ہے۔ اگر شیو سینا کے مراٹھی اخبار سامنا کی بات کریں تو وہاں پر تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور بات ہوتی ہے کہ مہانگر پالیکا نے گڈھوں کو کس طرح سے غائب کر دیا ہے ممبئی کی سڑکوں سے، اس پر انہوں نے سب سے بڑی خبر کی ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی خبر پردھان منتری نریندر مودی کے بھاشن کے بارے میں، چھوٹی خبر ماریا شاراپووا کے بارے میں، اور افسوس کہ اڑتا پنجاب کو یہاں پر کوئی جگہ نہیں مل پائی ہے۔
تو ایسا جی تو ایسا صرف اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ عام آدمی پارٹی، حالانکہ انوراگ کشیپ کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کی اپنی لڑائی ہے اور اس پارٹی سے اسے الگ رکھا جانا چاہیے۔
ہاں لیکن یہ بات بالکل، مطلب ہمیں اس بات کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ انوراگ کشیپ پہلے بھی शिवसेना को नकारते आए हैं, और उन्होंने पहले भी ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अनुराग कश्यप ने ये कहा है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी और खासकर शिवसेना के प्रति उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, तो शिवसेना ने भी उन्हें अपने अखबार में कोई जगह नहीं दी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं नजर आती है।
तो ये बताइए कि मुंबई तो बारिशों के लिए जाना जाता है और आपको मानसून का इंतजार करना पड़ रहा है, तो कितनी गर्मी झेल रहे हैं आप सुशांत?
देखिए, आखिरी जो सबसे ऊंचा तापमान था वो मेट डिपार्टमेंट के अनुसार 40 से 45 डिग्री के बीच में गया था, लेकिन जब आप यहाँ सड़कों पर खड़े होते हैं तो जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो इतनी ज्यादा है कि तापमान 50 से ज्यादा लगने लगता है, और अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, अखबार में कुछ चित्र है जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ।
चलिए, अखबारों के बाद अब आसमान की तरफ देखिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां के बैतूल में पानी को लेकर एक नगर पालिका कर्मचारी को गोली मार दी गई। गोली इसलिए मारी गई कि वो पानी की सप्लाई शुरू नहीं कर रहे थे। अभी दो दिनों पहले बैतूल में पानी की कमी के चलते धारा 144 लगा दी गई थी। पेश है सूर्य न्याजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पानी का संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में नगर पालिका कर्मचारी रमेश चाडुकर को पानी की सप्लाई शुरू नहीं करने की वजह से लखन डिंगिया ने गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक जिस क्षेत्र में लखन डिंगिया रहता है वहां कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की गई थी, और वो चाहता था कि रमेश पानी को खोल दे ताकि उस इलाके में पानी आ सके। आमला थाना के प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया,
इसमें पानी चलाने को लेकर इसने वॉल्वमैन के ऊपर दबाव डाला मारने वाले ने, और वॉल्वमैन ने बोला कि अभी टंकी में पानी नहीं है, पानी आएगा तो दे देंगे। तो इसने कट्टा रखे हुए था, बदमाश है, इसने उठा के उसको सीधे कट्टा अड़ाया और गोली मार दी।
उनका ये भी कहना है कि क्षेत्र में पानी का संकट अब आम बात हो गई है, ज्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई मुश्किल से हो पा रही है।
पानी की समस्या ऐसी है कि जैसे आमला में कभी 3 दिन में आता है पानी, कभी 4 दिन में आता है एक बार, और बोरखी में कभी 2 दिन में आता है, कभी 1 दिन छोड़ के आता है, अलग अलग वार्ड्स में कभी 4 दिन में, कभी 3 दिन में ऐसा पानी आ रहा है। ये समस्या तो चल रही थी, तो प्राइवेट टैंकर से ये लोग सप्लाई कराते रहते थे।
मध्य प्रदेश का बैतूल जिला अपने जंगलों के लिए जाना जाता रहा है। इस इलाके में बहुत ज्यादा हरियाली रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस इलाके में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की गई, जिसके चलते यहाँ पर भी पानी का संकट गहराने लगा है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले अजय दुबे बताते हैं,
देखिए बैतूल जो था वो वन संपदा से समृद्ध था और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, घने जंगल है, काफी वन्य प्राणियों की उपस्थिति है, लेकिन इसके बावजूद यदि सूखा और पानी की कमी यदि आई है तो लगातार वनों की कटाई है, अंधाधुंध अतिक्रमण है, वन भूमि का जो घनत्व कम होना हुआ है, निश्चित तौर पर आज उसने जो खेतों को जो खेती करने के लिए लोगों ने वनों को काटा है ये उसकी कीमत है।
बैतूल जिले में जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले ही धारा 144 लगाते हुए सभी तरह के निजी और सरकारी निर्माण कार्यों को रोक दिया था। इस आदेश को नहीं मानने वाले को 1 महीने की सजा या 200 रुपए जुर्माना किया जाएगा। शहर के फिल्टर प्लांट सूख चुके हैं और ग्रामीण इलाकों से पानी लाया जा रहा है। यही हालात हैंडपंपों के भी हैं, जिसमें जल स्तर नीचे चले जाने की वजह से ज्यादातर काम नहीं कर पा रहे हैं। जिले में पहली बार जल संकट को लेकर धारा 144 लगाई गई है, जो कि 25 जून तक जारी रहेगी। सुरह न्याजी, BBC न्यूज भोपाल।
पानी का संकट गहराता हुआ मध्य प्रदेश में। आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। झारखंड के आदिवासी बहुल जिले खूंटी के सुदूर गांव उलीहातू के रहने वाले बिरसा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी के दौरान आवाज उठाई थी। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
खूंटी के सुदूर गांव में सांझ ढलने के साथ बिरसा के वीर गाथा अब भी गूंजते हैं। यह वजह भी है कि उन्हें भगवान बिरसा कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आदिवासी अब भी उनके लौटने का इंतजार करते हैं। साल 1900 में बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, तब उनकी उम्र महज 25 साल थी। उनकी मूर्तियों से बेड़ियाँ हटाने की मांग पहले से होती रही हैं। अब इस फैसले पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार बताते हैं,
हाथों में हथकड़ियां दिखाना एक तरीके से उनको स्लेव तरीके से या उनको सिंबल ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी पॉजिटिव।
जबकि आदिवासी सरना धर्म समाज के लक्ष्मी नारायण मुंडा का कहना है,
सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है। बिरसा मुंडा के हाथों में हथकड़ी की जहाँ तक बात है, दरअसल वो गुलामी के प्रतीक नहीं है, वो आदिवासियों के संघर्ष के प्रतीक का इतिहास का बोध कराता है। और इसलिए हमारा मानना है कि सरकार का इस निर्णय बिल्कुल आदिवासी इतिहास को मिटाने की साजिश है।
वहीं सूबे में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रतन तिर्की इस फैसले का यह कहते हुए स्वागत करते हैं।
मेरा ये कहता है, क्या पेड़ी हट जाने के बाद क्या बिरसा मुंडा जी का जो सपना था, अबुआ निशुम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज, जल जंगल जमीन पर मारे काला हक, तंबाकू टेनेंसी का, संतान परमा टेनेंसी एक्ट का अक्षरशाह पालन होगा, क्या हमारे गांव में जिसके लिए झारखंड बना, जिन गरीब आदिवासियों के लिए या झारखंडियों के लिए, मूल निवासियों के लिए झारखंड बना।
बिरसा मुंडा के वंशज और सामाजिक कार्यकर्ता आश्रिता टूटी सीधे तौर पर तो इस फैसले को गलत नहीं ठहराती, पर वे चाहती है
भगवान बिरसा मुंडा हमारे आजादी के लिए बेड़िया बनाए गए, और इस बेड़ियों को सरकार तोड़ना चाह रही है, इसको हम लोग एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसको देखना चाहते हैं, और उसकी बेड़ियों को यथावत रखने की इच्छा हम लोग रखते हैं। इसलिए कि उस जंजीर को देख करके हम लोग को यह स्मरण रहता है कि हमारे लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है।
खूंटी के आदिवासी गाँवों के हालात पर पैनी नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकार अजय शर्मा बताते हैं कि गरीबी और स्वास्थ्य सुविधा का अभाव यहाँ की बड़ी समस्या है। अच्छा होता बिरसा की बेड़ियों को हटाने के साथ सरकार इधर भी ध्यान देती।
क्षेत्र की और भी महिलाओं और आम लोगों की हालत है, जो इलाज के अभाव में हर दिन मर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजें उन बेघरों में ही दबकर रह जा रही है जहाँ बिरसा ने यहाँ की खुशियों के लिए संघर्ष किया था।
जाहिर है बिरसा यहाँ के लोगों के दिलों में बसे हैं, नामी गिरामी संस्थानों, दुकानों और भवनों पर उनके नाम लिखे हैं, पर सवाल मौजूद हैं कि आदिवासी इलाकों में बिरसा के उलगुलान के अंकुर कब तक लहलहाएंगे। रांची से नीरज सिन्हा।
और अब सुनिए खेल की खबरें रजत चान्ना से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चान्ना। सबसे पहले बात टेनिस की। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ने रूसी खिलाड़ी मारिया शारापोवा पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद उन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले मार्च में भी उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में उन्हें प्रतिबंधित दवा मेल्डोनियम लेने का दोषी पाया गया था। 29 वर्षीय शारापोवा ने कहा कि उन्होंने चिकित्सा जरूरतों के आधार पर मेल्डोनियम ली थी। उन्होंने इस मामले में एक स्वतंत्र ट्राइब्यूनल के सामने एक सुनवाई का आग्रह किया था। शारापोवा ने अब कहा है कि वो 29 जनवरी से लागू होने वाले इस बैन के खिलाफ अपील करेंगी। उधर क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम कल जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 से 22 जून तक 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलने हैं। धोनी की कप्तानी में सीरीज के लिए टीम में चुने गए हैं कई युवा खिलाड़ी, और पूर्व भारतीय खिलाड़ी मदन लाल का मानना है कि सीरीज में क्लीन स्वीप से जीत दर्ज करनी चाहिए भारतीय टीम को। वहीं बैडमिंटन में साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज के दूसरे दौर में पहुंच गई है, जबकि पीवी सिंधु पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई। साइना ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की जाई लेई को 21-10, 21-14 से हराया। 7वीं वरीयता प्राप्त साइना का सामना मलेशिया की जिन वैंग गो से होगा। वहीं सिंधु को दक्षिण कोरिया की 40वीं वरीयता प्राप्त किम हो मिन ने 21-15, 21-19 से हराया। और पिछले 6 साल से 3 बार के चैंपियन रह चुके टाइगर वुड्स US ओपन गोल्फ में हिस्सा नहीं लेंगे। वुड्स ने कहा है कि वो टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं है, और इस बार इस टूर्नामेंट में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
नमस्कार, भारत अपने खात्मे की तरफ है, लेकिन उससे पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार। अपने 3 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इजरायली पुलिस का कहना है कि 2 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने तेल अवीव शहर में गोलीबारी की है, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के अलेपो शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में हुए हवाई हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने एक नया यात्री विमान पेश किया है, जिसके बारे में उसे उम्मीद है कि वह पश्चिमी देशों के उसके प्रतिद्वंद्वियों के बनाए विमानों को टक्कर देगा और दुनिया भर में बिकेगा। वैज्ञानिकों ने 7 लाख साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है, जिन्हें वे हॉबिट नाम से जाने जाने वाले छोटे कद के प्राचीन मानव के पूर्वज कहते हैं। वेनेजुएला की सरकार का कहना है कि उन्होंने हजारों टन खाद्य सामग्री का आयात किया है और इसे कम्युनल काउंसिल्स के जरिए सीधे परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। इराक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय संयोजक का मानना है कि फलूजा शहर में 90,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने। एक घंटे के बाद फिर से हाजिर होंगे विश्व भारती के साथ। तब तक के लिए फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।